घर, मकान, घरौंदा मानव जीवन की बुनियादी जरूरतों में से एक है। कहा जाता है कि पृथ्वी में आप कहीं पर भी रहें, लेकिन आपके घर जितना सुकून और आराम कहीं पर भी नहीं मिलता। क्या ये घर इतना महत्वपूर्ण है तो उतना ही आसान है इसको बनाना या फिर उसको खरीदना? बहुत बार हम सुनते हैं कि समझ में नहीं आ रहा कि घर बनाने के लिए क्या करें, कैसे तैयारी करें। अगर आर्थिक परिस्थिति बहुत मजबूत नहीं है और लोन की आवश्यकता है तो लोन कैसे ली जाए, कहां से ली जाए, क्या सावधानी रखें? अगर आपके मन में भी इस प्रकार के प्रश्न हैं, तो आइए हम देते हैं उसकी जानकारी। हमारे साथ जुड़े हैं इस क्षेत्र के तज्ञ सेवा सिंह जी। सेवा सिंह होम लोन कंपनी में डायरेक्टर हैं और इस क्षेत्र में 10 साल से भी ज्यादा अनुभव रखते हैं। सेवा जी, SBS हिंदी पर आपका स्वागत है।
धन्यवाद हरिता जी, आपको और आपके श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
सेवा जी, बताइए कि घर खरीदने का जब मन हो तो सबसे पहला कदम क्या होगा, कैसे शुरुआत की जाएगी?
घर खरीदने से पहले हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि हम कितनी रीपेमेंट्स, कितनी मासिक किश्त हम अफोर्ड कर सकते हैं। अभी हम अगर किराए पर रह रहे हैं तो हम कितना किराया दे रहे हैं और हमारा घर खरीदने के बाद हमारी मासिक किस्त में कितनी वृद्धि होगी, ये जानना बहुत जरूरी है। अगर घर खरीदने वाले हस्बैंड वाइफ दोनों काम करते हैं और उनकी इनकम, उनकी आय में इंक्रीज उसके कोई आसार नहीं है नियर फ्यूचर में, तो आपकी जो नेट इनकम रहेगी वो सेम रहेगी लेकिन आपकी कमिटमेंट बढ़ जाएगी। उस चीज को ध्यान रखते हुए आपको अपना सबर्ब आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। इस प्लानिंग के लिए आपको या तो किसी मॉर्गेज ब्रोकर से मिलना चाहिए या फिर अपने बैंक में जिसके साथ आपकी बैंकिंग है उनसे सलाह मशवरा करना चाहिए।
जैसे कि आपने कहा कि लोन के लिए किसी भी ब्रोकर के पास जा सकते हैं या बैंक का संपर्क कर सकते हैं, जानना चाहेंगे कि क्या प्लस पॉइंट्स है और क्या सावधानी बरतने की जरूरत है?
दोनों का अपना फायदा है, बट ब्रोकर के पास जाने के ज्यादा फायदे इसलिए हैं, आप एक ब्रोकर के पास सभी बैंकों के बारे में जानकारी ले सकते हैं। आप अपने बैंक के पास जाएंगे तो वो सिर्फ आपको अपने ही बैंक के बारे में बता पाएंगे। तो मेरा अपना अनुभव ये है कि एक ब्रोकर के पास जाना ज्यादा फायदेमंद है और जो काफी सालों से हैं, जो एक्सपीरियंस्ड हैं, अनुभव वाले ब्रोकर्स हैं, जिनका सफलता का रेट अच्छा है, जो आपको समझें, आपकी जरूरतों को समझें, आपके नंबर्स को समझें, उनके पास जाना ज्यादा फायदेमंद है। उनके पास जाने से, क्योंकि वो ये काम सुबह शाम यही काम करते हैं, उन्हें पता है किस बैंक की क्या पॉलिसी है, किस बैंक में क्या ऑफर चल रहा है, तो बोरोवर यानी लोन लेने वाले के लिए समय बचता है उनका। आप अलग अलग बैंकों में जाके पूछेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको उतनी या सही जानकारी मिल पाएगी जो आप एक ब्रोकर से प्राप्त कर सकते हैं। सावधानी मैं ये कहना चाहूंगा कि आप ये निश्चित करें कि जिस भी ब्रोकर के पास जा रहे हैं उसे अनुभव है, काम में माहिर है।
ये जानना चाहेंगे कि बहुत बार हम सुनते हैं कि मॉर्गेज इंश्योरेंस लेना बहुत जरूरी है, ये मॉर्गेज इंश्योरेंस क्या होता है?
मॉर्गेज इंश्योरेंस जो है उसके बारे में बहुत भ्रांतियां हैं। बैंक जो भी लोन देता है उसे इंश्योर करता है, उसका इंश्योरेंस लेता है और उस इंश्योरेंस का प्रीमियम एक बार देना होता है जब तक लोन 80% तक है, यानी कि बैंक आपको 80% लोन दे रहा है और आपका डिपॉजिट 20% है, उस इंश्योरेंस का प्रीमियम बैंक अदा करता है, बैंक पे करता है, उस इंश्योरेंस को मॉर्गेज इंश्योरेंस बोलते हैं। लेकिन जहां आपका डिपॉजिट 20% से कम है, 15% है, 10% है या 5% है, वहां उस इंश्योरेंस का प्रीमियम बैंक बोरोवर यानी लोन लेने वाले के ऊपर डाल देता है और वो लोन लेने वाले को देना पड़ता है। जितना कम डिपॉजिट होता है उतना ज्यादा मॉर्गेज इंश्योरेंस होता है। मैं ये मानता हूं कि मॉर्गेज इंश्योरेंस बुरी चीज नहीं है, क्योंकि अगर हमारे पास सपोज 20% पैसे नहीं है डिपॉजिट के लिए, हम चाहते हैं कि हम मॉर्गेज इंश्योरेंस ना दें, तो हमें 20% पैसे जमा होने तक इंतजार करना पड़ेगा और जब तक हम 20% पैसे जमा करेंगे तब तक प्रॉपर्टी की वैल्यू उससे बहुत ज्यादा बढ़ चुकी होगी। मॉर्गेज इंश्योरेंस लगभग 0.5% से लेकर 5% तक होता है।
दूसरा ये जानना चाहेंगी कि फर्स्ट होम बायर का जो ग्रांट है उसके बारे में भी बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स चल रहे हैं कि वो कम हो गया है या फिर किसी किसी क्षेत्र में या किसी खास प्रकार की परिस्थितियों में ही उपलब्ध है, क्या है ये पूरी जानकारी?
फर्स्ट होम बायर की ग्रांट जो है वो फेडरल ग्रांट है, लेकिन उसको स्टेट गवर्नमेंट्स इम्प्लीमेंट करते हैं। फर्स्ट होम ग्रांट इस समय सिर्फ नए घरों पर उपलब्ध है, और जो पहला पहला घर खरीद रहे हैं और रेजिडेंट्स हैं, रेजिडेंट या सिटीजन है, उन्हें ये ग्रांट मिलता है। उसकी भी कुछ लिमिट्स हैं, ऑफिस ऑफ स्टेट रेवेन्यू उसमें बदलाव करता रहता है। इस अभी 1 जनवरी से वो ग्रांट 10,000 कर दी गई है। ये वन टाइम ग्रांट है। और इसके अलावा दूसरा बेनिफिट न्यू साउथ वेल्स में ये है कि लिमिट तक प्रॉपर्टी की प्राइस है तो आप स्टैम्प ड्यूटी पे नहीं करते, और उसके बाद एक स्लैब है उसमें आपको स्टैम्प ड्यूटी का कंसेशन है।
सेवा जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जब हम लोन के लिए अप्लाई करते हैं कौन कौन से दस्तावेज जरूरी है साथ में रखने के लिए, और अंदाजन कितना समय लगता है लोन का सैंक्शन मिलने में?
देखिए हरिता जी, जब भी हम लोन लेने जाते हैं तो बैंक 3 जरूरी चीजें देखता है। नंबर 1 आपकी इनकम, इनकम आय के बारे में जो है, अगर आप एम्प्लॉय हैं तो आपकी पे स्लिप, आपका ग्रुप सर्टिफिकेट, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आपकी टैक्स रिटर्न, 2 साल की टैक्स रिटर्न, और साथ में टैक्स असेसमेंट नोटिस जो ATO से आता है। उसके अलावा इनकम, रेंटल इनकम अगर कोई आपको आ रही है, किराया, किराए का कोई मकान है आपका जो आपने किराए पर दे रखा है उसकी इनकम आ रही है तो उसकी स्टेटमेंट। उसके अलावा अगर आपको सेंट्रल लिंक से फैमिली टैक्स बेनिफिट या किसी और तरह की इनकम आ रही है तो उसका डॉक्यूमेंट सेंट्रल लिंक से, या और कोई इनकम, पेंशन है, इंटरेस्ट है, शेयर्स का डिविडेंड है, तो वो सब उनके टैक्स रिटर्न के अंदर वो डिक्लेयर्ड होने चाहिए और उसका डॉक्यूमेंट प्रॉपर अथॉरिटी से हो। ये तो इनकम के बारे में है। दूसरा आपकी आइडेंटिफिकेशन, जिसमें आपका ड्राइविंग लाइसेंस, आपका पासपोर्ट फर्स्ट पेज, और आपके रेजिडेंसी का प्रूफ यानी कि वीजा का प्रूफ। तीसरी चीज जो है वो आपके सेविंग्स के बारे में है कि आपके पास कितना पैसा है। अगर आपका 20% डिपॉजिट है तो उसका एविडेंस, और अगर आपका डिपॉजिट 20% से कम है तो आपकी 6 महीने की स्टेटमेंट जिसमें आपकी इनकम जा रही है, जितने भी अकाउंट्स हैं उन सब की ट्रांजैक्शन हिस्ट्री 6 महीने तक। यूजुअली बैंक यही 3 चीजें देखता है। इसके अलावा अगर आपके पास कोई लोन है, जैसे कार लोन है या पर्सनल लोन है, तो उसकी लेटेस्ट स्टेटमेंट, और आपके पास जितने भी क्रेडिट कार्ड्स हैं, स्टोर कार्ड है या कोई इंटरेस्ट फ्री कार्ड है, उन सब की स्टेटमेंट्स। समय के बारे में कितना समय लगता है, अगर सारे कागज ठीक ठाक हैं, एप्लीकेशन लॉन्च करने के बाद 1 से 3 दिन के बीच में डिसीजन हो जाता है।
बहुत बहुत शुक्रिया सेवा जी, SBS हिंदी के साथ इतनी महत्वपूर्ण जानकारी शेयर करने के लिए।
धन्यवाद हरिता।